नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, ग्रेगर होपे की पुस्तक प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी इनोवेशन थ्रू हार्मोनाइजेशन। एंटरप्राइज आईटी और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग पर केंद्रित एक रणनीतिक मार्गदर्शिका है। यह आर्किटेक्ट एलिवेटर पुस्तक श्रृंखला का हिस्सा है और मुख्यतः उन तकनीकी नेताओं, आर्किटेक्ट्स तथा प्लेटफॉर्म टीमों के लिए लिखी गई है जिन्हें साझा आंतरिक या क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में निर्णय लेने हैं। पुस्तक का मूल प्रश्न सरल लेकिन कठिन है, क्या एक प्लेटफॉर्म मानकीकरण बढ़ाते हुए भी नवाचार, डेवलपर गति और अनुपालन को बेहतर बना सकता है? होपे का उत्तर किसी तैयार तकनीकी खाके में नहीं, बल्कि बेहतर समस्या समझ, निर्णय अनुशासन और उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन में है। वे प्लेटफॉर्म को केवल साझा इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल चेन या सेल्फ सर्विस पोर्टल मानने से सावधान करते हैं। इसके बजाय पुस्तक बताती है कि उपयोगी प्लेटफॉर्म बाधाएं हटाता है, विकल्पों को सार्थक ढंग से व्यवस्थित करता है और टीमों की क्षमता बढ़ाता है। रूप को आर्किटेक्चर संबंधी तर्क और व्यावहारिक रणनीतिक प्रश्नों के माध्यम से यह पुस्तक प्लेटफॉर्म निर्माण की तकनीकी तथा संगठनात्मक जटिलताओं को जोड़ती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्लेटफॉर्म का अर्थ साझा सेवाओं से अधिक उपयोगकर्ताओं की नई क्षमता है। पुस्तक का केंद्रीय आग्रह है कि प्लेटफॉर्म को तकनीकी घटकों की सूची से नहीं, उसके द्वारा सक्षम की गई नई क्षमताओं से परिभाषित किया जाना चाहिए। बहुत सी संस्थाएं साझा क्लाउड अकाउंट, पाइपलाइन, कुबेरनेट्स वातावरण या एपीआई संग्रह को प्लेटफॉर्म कह देती हैं। होपे के दृष्टिकोण में यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा संग्रह उपयोगकर्ताओं की वास्तविक बाधाएं कम करे, यह जरूरी नहीं। एक प्रभावी प्लेटफॉर्म डेवलपर या उत्पाद टीम को सुरक्षित और तेज ढंग से कुछ ऐसा करने देता है जो पहले कठिन, धीमा या असंगत था। इसलिए आरंभिक प्रश्न यह होना चाहिए कि कौन सी व्यावसायिक या विकास संबंधी समस्या बार बार सामने आ रही है और उसे हल करने में किन घर्षणों का सामना होता है। तकनीक का चयन बाद का निर्णय है, यह क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से सभी संभावित जरूरतों का अनुमान लगाकर बनाया गया विशाल प्लेटफॉर्म अक्सर अनुपयोगी क्षमताओं और अनिवार्य प्रक्रियाओं का बोझ बन जाता है। पुस्तक प्लेटफॉर्म को सेवा देने वाली मशीन के बजाय क्षमता बढ़ाने वाले माध्यम की तरह देखने को कहती है। इस कसौटी पर सफलता का संकेत केवल अपनाने की संख्या नहीं, बल्कि यह भी है कि उपयोगकर्ता ऐसी उपयोगी चीजें बना सके जिनकी कल्पना प्लेटफॉर्म टीम ने पहले नहीं की थी। दूसरा, मानकीकरण और नवाचार का संतुलन। फल टोकरी का रूपक होपे मानकीकरण और नवाचार को स्वाभाविक विरोधी मानने वाली सोच पर प्रश्न उठाते हैं। सही सीमाओं में मानकीकरण दोहराए जाने वाले काम को सरल करता है, सुरक्षा और अनुपालन को उत्पाद विकास के प्रवाह में लाता है तथा टीमों को अलग अलग आधारभूत समाधान बनाने से बचाता है। बचा हुआ ध्यान विशिष्ट उत्पाद और ग्राहक समस्या पर लगाया जा सकता है, लेकिन हर स्तर पर एकरूपता थोपना नवाचार को रोक सकता है। पुस्तक का फल सलाद और फल टोकरी रूपक इस अंतर को समझाता है। फल सलाद में विविध वस्तुएं खुलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, जबकि फल टोकरी में विविधता बनी रहती है, लेकिन उसे उपयोगी ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी सभी टीमों को एक जैसे ढांचे में पिघलाना नहीं, बल्कि सुरक्षित सीमाओं, साझा मानकों और स्पष्ट विकल्पों के भीतर अलग जरूरतों को पूरा करना है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि प्लेटफॉर्म को जहां जोखिम और दोहराव अधिक हो, वहां मजबूत राय रखनी चाहिए, जैसे पहचान, सुरक्षा, नियंत्रण या डिलीवरी के मूल रास्ते। वहीं उत्पाद की विशिष्ट तकनीकी जरूरतों के लिए विवेकपूर्ण विकल्प बचने चाहिए। इस प्रकार सामंजस्य का अर्थ समानता नहीं, बल्कि विविधता को संचालित करने योग्य बनाना है। तीसरा, अमूर्तन बनाम भ्रम, जटिलता को छिपाने की सीमा। पुस्तक अच्छे प्लेटफॉर्म और खराब प्लेटफॉर्म के बीच एक निर्णायक भेद रखती है। अच्छा प्लेटफॉर्म अमूर्तन बनाता है, जबकि खराब प्लेटफॉर्म भ्रम पैदा करता है। अमूर्तन का काम अनावश्यक या अविभेदक जटिलता को पीछे रखना है, ताकि उपयोगकर्ता अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सके। भ्रम तब बनता है जब प्लेटफॉर्म वास्तविक सीमाओं, लागतों, जोखिमों या संचालन संबंधी परिणामों को इतना छिपा देता है कि उपयोगकर्ता गलत धारणा के आधार पर निर्णय लेने लगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी सेल्फ सर्विस अनुभव में संसाधन तुरंत उपलब्ध लगते हैं, पर लागत, डेटा दायित्व या विश्वसनीयता की सीमाएं अस्पष्ट हैं, तो सुविधा बाद में अव्यवस्था पैदा कर सकती है। होपे का तर्क यह नहीं है कि उपयोगकर्ताओं को हर आधारभूत विवरण जानना चाहिए, बल्कि प्लेटफॉर्म को वही जटिलता सामने लानी चाहिए जो सही निर्णय, सुरक्षित उपयोग और जिम्मेदार स्वायत्तता के लिए आवश्यक है। इस विचार का डिजाइन पर सीधा असर पड़ता है। दस्तावेजीकरण, डिफॉल्ट विकल्प, गार्डरेल, फीडबैक और त्रुटि संदेश केवल सहायक सामग्री नहीं है, वे प्लेटफॉर्म के व्यवहार का हिस्सा है। प्लेटफॉर्म टीम को यह तय करना होता है कि क्या छिपाना है, क्या स्पष्ट करना है और किस बिंदु पर उपयोगकर्ता को विकल्प देना है। इसी संतुलन से संज्ञानात्मक भार घटता है पर जवाबदेही समाप्त नहीं होती। चौथा, बाधाएं हटाने के साथ नई बाधाओं को पहचानने की निर्णय दृष्टि प्लेटफॉर्म बनाने का सामान्य वादा है कि वह विकास की बाधाएं हटाएगा। पुस्तक इस वादे को अधिक सावधानी से देखने को कहती है। किसी बाधा को हटाने पर अक्सर विकल्पों, निर्भरताओं या शासन की नई जटिलताएं पैदा होती हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म रणनीति केवल गति बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि सीमाओं और उनके परिणामों को समझने का अभ्यास है। होपे नवाचार तथा मानकीकरण को एक ही सीधी रेखा के दो छोरों की तरह देखने के बजाय निर्णय की बहुआयामी प्रकृति पर जोर देते हैं। किसी निर्णय में गति, जोखिम, लागत, उपयोगकर्ता अनुभव, अनुपालन, संचालन और उत्पाद भिन्नता एक साथ मौजूद हो सकते हैं। यदि नेतृत्व केवल एक आयाम जैसे तकनीकी मानकीकरण को अधिकतम करेगा तो दूसरे आयामों में नुकसान छिप सकता है। इसीलिए आर्किटेक्ट की भूमिका केवल समाधान घोषित करने की नहीं बल्कि निर्णय के संदर्भ, विकल्पों और व्यापारिक परिणामों को स्पष्ट करने की है। प्लेटफॉर्म टीमों को यह जांचना चाहिए कि उनकी सुविधा किसके लिए बाधा घटाती है, किस पर नया नियंत्रण लगाती है और क्या वह नियंत्रण उचित है। यह दृष्टि विशेष रूप से आंतरिक प्लेटफॉर्म में उपयोगी है जहां केंद्रीय टीम की प्राथमिकताएं और उत्पाद टीमों की वास्तविक जरूरतें अलग हो सकती हैं। समझदार रणनीति बाधाओं को मिटाने का दावा नहीं करती बल्कि उन्हें स्पष्ट, कम और उचित स्थान पर रखती है। अंत में आंतरिक प्लेटफॉर्म की अर्थव्यवस्था, अपनाव और टीम की भूमिका। पुस्तक आंतरिक प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक क्लाउड प्रदाताओं की नकल मानने से बचाती है। किसी उद्यम की प्लेटफॉर्म टीम सामान्यतः क्लाउड प्रदाता जैसी विशाल अर्थव्यवस्था, व्यापक उत्पाद निवेश या हर उपयोग मामले के लिए सेवा नहीं दे सकती। इसलिए उसकी सफलता का आधार सस्ता या सर्वव्यापी विकल्प बनने में नहीं बल्कि संस्था के विशिष्ट संदर्भ में अलग मूल्य देने में है। यह मूल्य साझा अनुपालन, संगठन की डिलीवरी प्रक्रिया, विशेष डोमेन ज्ञान, भरोसेमंद डिफॉल्ट और टीमों के बीच बेहतर समन्वय के रूप में आ सकता है। अपनाव भी आदेश से स्थायी नहीं होता। यदि प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल इसलिए हो कि उसे अनिवार्य बनाया गया है तो टीमें उसके आसपास रास्ते खोज सकती है या उसकी कमजोरियों को छिपा सकती है। वास्तविक अपनाव तब आता है जब उपयोगकर्ता अनुभव, मार्गदर्शन और परिणाम पुराने तरीके से बेहतर हों। प्लेटफॉर्म टीम को इसलिए उत्पाद टीम की तरह सोचना पड़ता है। उपयोगकर्ताओं को समझना, उनकी प्रतिक्रिया लेना, सेवा की सीमाएं बताना और क्रमशः सुधार करना। पुस्तक के अनुसार प्लेटफॉर्म का उद्देश्य लोगों के लिए काम कर देना नहीं, उन्हें अधिक सक्षम बनाना है। इसलिए टीम की भूमिका टिकट निपटाने वाली केंद्रीय सहायता इकाई से आगे जाती है। वह ऐसे इंटरफेस, मानक और सीखने के रास्ते बनाती है जिनसे अन्य टीमें अधिक स्वायत्त, सुरक्षित और प्रभावी ढंग से निर्णय ले सके। निष्कर्ष में, प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, डेवलपर प्लेटफॉर्म, क्लाउड रणनीति, इंजीनियरिंग नेतृत्व या आईटी परिवर्तन से जुड़े निर्णय लेते हैं। विशेष रूप से यह उन संगठनों के लिए प्रासंगिक है जहां साझा प्लेटफॉर्म बनाने की चर्चा तेज है लेकिन उसके उद्देश्य, उपयोगकर्ता और आर्थिक तर्क अभी स्पष्ट नहीं है। तकनीकी कार्यान्वयन की चरणबद्ध पुस्तिका खोजने वाले पाठक इसे सीमित पाएंगे क्योंकि इसका जोर किसी एक उत्पाद, टूल या संदर्भ आर्किटेक्चर पर नहीं है। इसका व्यावहारिक लाभ बेहतर प्रश्नों में है, कौन सी समस्या हल करनी है, किस जटिलता को छिपाना उचित है, कहां विकल्प बचाने हैं और प्लेटफॉर्म किस प्रकार टीमों की क्षमता बढ़ाएगा। बौद्धिक रूप से पुस्तक मानकीकरण बनाम नवाचार जैसे सरल दिखने वाले द्वंद्व को अधिक परिपक्व ढंग से देखने में मदद करती है। समान विषय की कई पुस्तकें प्लेटफॉर्म को मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर स्वचालन, टूल चेन या संगठनात्मक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। होपे की अलग पहचान रणनीति, आर्किटेक्चर और उपयोगकर्ता अनुभव को जोड़ने में है। उनके रूपक जटिल विचारों को सरल बनाते हैं लेकिन मुख्य मूल्य रूपकों में नहीं बल्कि उनके पीछे के निर्णय तर्क में है। पुस्तक यह याद दिलाती है कि प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता उसकी तकनीकी चमक से नहीं बल्कि उसके द्वारा घटाए गए घर्षण, बनाए रखे गए विवेक और सक्षम हुई अप्रत्याशित उपयोगकर्ता रचनात्मकता से मापी जानी चाहिए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ग्रेगर होप, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।